है तो यहाँ पे मिठाई बढ़ती है बजाय गोली चलने के। ये कैसा निजाम है? वो स्टडी में अब डिटेल में नहीं जाता, तो मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके भी बहुत सारे पहलू हैं। देखें, जब पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान कंसीव किया गया था तो उस वक्त एक बड़ा अच्छा एक मिस्टर जना का था, जब ये डिटर्मिन हो गया कि पार्टीशन होगी, तो मिस्टर जना को सवाल किया गया कि कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा द वे कैनेडा एंड अमेरिकन लिव्स। तो मैंने गुजारिश की कि जैसे कंसीव किया गया था और जो हालात बने वो बहुत मुख्तलिफ थे। अब आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी, वाई मिलिट्री इंटरवेंशन अगेन एंड अगेन। पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन जो सरहदें हमारी मिलती हैं लिटिल लेस देन 7000 किलोमीटर बनता है और तकरीबन 1000 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। इनमें तकरीबन 2500 किलोमीटर के 2700 किलोमीटर के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं, तकरीबन हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, तकरीबन 2400 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, तकरीबन 900 के करीब ईरान के साथ और 500 के करीब हमारा चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। इनमें हमारे चाइना और ईरान के बॉर्डर हॉस्टाइल बॉर्डर नहीं है, बाकी हमारे
ईरान का भी हॉस्टाइल हो चला
है। अब अपनी एज ऑफ नाउ मैं रिलेटिव कंपैरिजन में करूं, लेकिन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान आपके सामने है जी, विच मीन्स टू से 80% ऑफ द बॉर्डर हैड बीन हॉस्टाइल और हम प्रैक्टिकली वॉर लाइक सिचुएशन में है फ्रॉम डिकेड्स। ठीक है जी, और लीव साइड सी पैक के बाद और पहले भी और आप बिलखसूस 1000 किलोमीटर की आपकी और हमारी जो कोस्टल लाइन है वो भी किस किस्म की अहमियत रखती है और किस किस्म की थ्रेट रखती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के तालिबे इल्म मैंने जो जानते हैं दे नो इट वेरी वेल जी। ठीक है जी, अब ये एक हकीकत है पाकिस्तान की, इस हकीकत से आप मुनहरफ नहीं हो सकते। आप हजार कहते हैं चौकीदार है, ये है वो है, आगे पीछे, पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में, पाकिस्तान के खारजी मामलात का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। वी कांट ज्योग्राफिकली रीलोकेट पाकिस्तान। पाकिस्तान हैपन्स टू बी लोकेटेड उस खत्ते में, हमारा वो हिस्सा है जो यही बरस हिंदुस्तान पिछले, जब 2000 पाकिस्तान तो भी बना, 70 से अगर 2000 साल की तारीख लगें तो इसी बोलान पास से इन्वेड होता रहा। मैंने पहले भी गुजारिश की, सिर्फ आप कोल्ड वॉर ईरा के बाद देख लीजिए जो था आफ्टर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कोल्ड वॉर ईरा इटसेल्फ, उसके बाद सोवियत अफगान इन्वेजन, उसके बाद ऑपरेशन एंड्योरेंस फ्रीडम। हम हजार कहते रहे हमारा मसला नहीं, हमारा मसला है और हमारा मामला है कि जब इतनी बड़ी पार क्लैशेस का इंटरेस्ट इस खत्ते पे होगा तो वहां पे मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल होगा। आप थेरी में आप हजार ही कहते रहे चौकीदार है उनका काम ये है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये भी हकीकत है। इसी के लिए मैंने आपको कहा जो तीन सब्जेक्ट मैंने आपने निशानदेही की, रिलीजन को रिविजिट करना, रोल ऑफ रिलीजन इन टू आर दस्तूर में, रोल ऑफ मिलिट्री, मैं उसको कहता हूं कि उसको लेजिटिमाइज करें, उसका वो ऐसा एक्नॉलेज करें अपने आईन में ताकि बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन ना हो, दैट विल बी द बेस्ट वे। क्योंकि उस देखिए दुनिया में कोई इंटरनेशनल निजाम नहीं है चलाने का दस्तूर। मैं आपको कहूं कि क्या बरतानिया और अमरीका की एक जमहूरियत है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अपने दस्तूर हैं। हमारे पास आज 70-80 साल का एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने दस्तूर को खुद अमेंड करना है और हमने दस्तूर चलाना है। ऑफकोर्स ये जब मैं बातें कर रहा हूं ये बातों का तब हल हो सकता है जब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें बैठें और इसको ऑब्जेक्टिवली एड्रेस करें और पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पाकिस्तान। अब आप जरा देखिए दो मिनट के लिए कि जब पाकिस्तान बना था, मैं वहां से शुरू करता हूं, तो एक सूबे की आबादी बाकी चार सूबों से ज्यादा थी, सूबा एक था, मैं इस मशरकी बंगाल की बात कर रहा हूं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव का बैलेंस देखिए ना जी, वो तो वहां से कहानी शुरू हुई। आज आ जाइए, एक वो सूबा जिसकी आबादी, जिसका एरिया ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान है और आबादी आधे कराची की है, बलूचिस्तान की तरफ मैं हवाला दे रहा हूं आपको, और नाम प्रोविंस का है, टाइटल देखिए सिंबॉलिकली वो आता है। अब इसी की एक रिवर्स मिसाल मैं आपको देता हूं, पंजाब जो आज मौजूदा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की आबादी उसके अंदर है, और फिर वो लगता है लेबल पंजाब खा गया, पंजाब ये कर गया, क्योंकि उस साइज और रजम की वजह से हर चीज पंजाब है, नेशनली ज्यादा आबादी है तो ज्यादा शेयर होगा, लेकिन उसको जब पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है तो किस एंगल से किया जाता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है पाकिस्तान के सूबों का, ये बिल्कुल तोड़ना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं माइक्रो लेवल पे कि इकोनॉमिकली फिर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं एक रफ अगर फार्मूले की बात करूं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हर डिवीजन को आज सूबे का नाम दे दें, ये नॉमन क्लेचर भी बड़ा डिसेप्टिव है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एंड प्रोविंस. इनकी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन आप नहीं बता सकती और डिफरेंट डेफिनेशन नॉमन क्लेचर साइकोलॉजिकली एक बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट देता है. इसी के पंजाब की अगर लेट से अगर आज मेरा ख्याल है 10 हमारे डिवीजन है, अगर आप दें लेट से गुजरात को कहें गुजरात का सूबा, सुरगोदा डिवीजन का मिसाल के तौर मैं गुजारिश करता हूं
आप टेरिटरीज बना दीजिए.
नहीं फिर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो नाम है ना आप ये जो सूबाई तासुब है आपका. देखिए व्हाट इज कॉमन, मैं दोबारा उस पहली बात पे आ रहा हूं, इसको इंटेग्रेट करके आप बता रहा हूं. मैं अगर आपको ये सवाल करूं कि यही सूबे या जब पाकिस्तान बना था 5 सूबे थे, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट देम, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट देम, नथिंग बट फॉर द रिलीजन.
रिलीजन था और एक वही ठीक है जी पार्टीशन में सारों ने रोल प्ले
किया. रोल बहुत सारे रोल यहां पे भी नहीं प्ले किया. एक्सक्यूज मी, मैं मिसाल के तौर पे आपको गुजारिश करता हूं कि नहीं नहीं यहां पे आपको रिकॉर्ड चुक बात उस तरफ गई. एनडब्ल्यूएफ भी मुस्लिम लीग लॉस्ट, उधर रेफरेंडम में हम जीते और 1.56% से हम जीते और लंबी बात है उस तरफ मैं नहीं आता. कैसे आप कह सकती हैं बलोचिस्तान की एक और नई थी. द ओनली थिंग इंटेग्रेट्स अस जो मैंने पहली बात आपसे की रिलीजन, दैट्स द ओनली कॉमन फैक्टर अमंग्स अस. मुझे पता है जो मैं गुजारशात आपसे कर रहा हूं दे आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ सेक्युलर स्कूल ऑफ थॉट जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी, बट इट डजंट मैटर. मैं तो एकेडमिक इंटरेस्ट में बात करूं कि होना क्या चाहिए. जब बुनियाद बनी थी दीन की और दूसरी मैंने आपको मिलिट्री का रोल बताया, तीसरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया. ये तीन फंडामेंटल्स हैं विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मैं आता हूं उस बात, वो तो मैंने आपसे पहले गुजारिश किया कि ऑल द स्टेक होल्डर्स इफ दे हैव द विल एंड द इंटेंशन. क्योंकि अगर हमने वाकई बैठना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और हम मुखलिस हैं, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. ये सियासी जमातें और जमातों की लीडरशिप भी ये फैसला कर लें.
आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, नोबडी हैज अ नेशनल इंटरेस्ट. व्हाट वुड यू से?
इट्स वेरी ऑब्वियस. हम तो बात कर रहे हैं ना कि मसले का हल क्या है, वो तो गिवन है. क्योंकि उनके लिए मेरा उनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है. ये जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है ये पाकिस्तान पे की वजह से ये सब आप बेनिफिशियरी बने हुए हैं. अगर पाकिस्तान को ही हमने खोखला कर दिया और पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमने ना वॉच किया तो कहां पे हम ये जो आपने पर्सनल इंटरेस्ट बनाया है ये कहां पे पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा? और जिनको शक है वो क्रॉस द बॉर्डर देख लें कि जिनको इसकी जिनसे इसकी कदर आपने पूछनी है इस पाकिस्तान की, वो चले जाए अक्रॉस द बॉर्डर, वो समझ जाएगा कि भाई क्या पाकिस्तान वैल्यू करता है जी. तो मैं वो आपको गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम करंट अफेयर्स पे हम करते हैं, बट इट्स अबाउट टाइम कि वी लुक इनटू इट वेरी ऑब्जेक्टिवली. और ये हमारा जो एक तकरीबन 77-78 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसको मद्देनजर रख के मैं कम से कम अपनी माइक्रो लेवल पे जाएं तो बहुत इश्यूज हैं, लेकिन जो आपका चूंकि टाइम रेस्ट्रिक्टेड है उसमें मैं नहीं आता. मैं इसी के लिए आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल बुनियादी चीजें जिसमें आपने बुनियादी डायरेक्शन डिटर्मिन करना है. मैंने पहले आपको साबित करने की कोशिश की है नाम से ही कि डू वी हैव अ क्लियर डायरेक्शन, तो वी डोंट हैव, वी आर हाइब्रिड. तो ये जब तक हम इस मसले को नहीं एड्रेस करेंगे जी, तो मेरी समझ से बाहर है फिर हम यही.
आई एग्री सर, मैं आपकी हर बात से एग्री, मगर मसला ये कि मेरी रोज किसी न एक पॉलिटिशियन से बात होती है. आप यकीन कीजिएगा बात को घुमाने में जितना पॉलिटिशियन माहिर है ना, आप सवाल गंदम जवाब चना, आप सिर्फ ब्लेम पॉलिटिक्स करते हैं. इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, लोगों के दिल में बहुत नफरत है. आप देखिएगा किसी न किसी एक को उन्होंने गधे पे जब सवार के सैर कराई ना, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि कितनी रिवेंजफुल है आपकी आम आवाम. पॉलिटिशियन से हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी शैला रजा साहब से आज बात हुई एंड शी सेड हम तो सिर्फ ताउन कर रहे हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है. दे आर टेकिंग शेयर इन एवरीथिंग, ऑल पोलिटिकल पार्टीज, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज देयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने जो तीन आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स को, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ना आपका ब्यूरोक्रेट सिंसियर है, ना आपका पॉलिटिशियन सिंसियर है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफकोर्स आर्मी, अगेन आर्मी कोई अपने नंबर खुद नहीं बना रही. अगर बेहतरीन आर्मी है तो इंटरनेशनली है, मगर आर्मी के भी चार बंदे इतने बुरे आ जाते हैं, दे जस्ट रिवॉल्व अराउंड देमसेल्फ, दे जस्ट रिवॉल्व अराउंड देमसेल्फ टू मेक मनी. तो अब मुझे ये बताइएगा इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा?
अरविंद भैया आपने कहा कि घंटी कौन बांधेगा, ये सब सुन लें और देख लें जी, घंटी बंद चुकी हुई है. ये अल्लाह ताला इनको मौका दे रहा है, इनका वो हशर होगा. अभी तो आप सिर्फ शख्सियात का हशर देख रही है ना, دس از انف اے میسج اینڈ اے وارننگ. یہ تو ابھی آپ شخصیات کا دیکھ رہی ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے گا. آئی تھنک وی آر مسٹیکن. یہ تو عوام کا پیمانہ ہے صبر کا کہ اس کی لمٹ کہاں تک ہے. آپ کے سامنے اگر یہ آئی اوپنر نہیں ہے, یہ میاں صاحب کا لندن جانا اٹ سیلف, اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ذات کی میں بات کر رہا ہوں, بٹ ایک سیکنڈ, دا پوائنٹ از
دا بروکن ہارٹ.
ایک چھوڑیں بروکن ہارٹ اور جڑا ہوا ہاتھ, اس کو چھوڑیں, آپ ذرا دو منٹ کے لیے دیکھیے وہ کہاں گیا لندن پلان. وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم پلانس تو تھے نا, کہاں گئے وہ پلانس. میں کہتا ہوں ایک انسان سوچتا ہے جی زندگی میں آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے. اگر آپ کو اپنی گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کے دروازے تک کا جو فاصلہ ہے جو چند گز ہوگا, اس بے حرمتی سے اگر آپ کو یہ اتنا چھوٹا سا سفر کرنا پڑے تو مجھے آپ بتائیے یہ سب ٹائٹل, یہ دولت, آئی ڈونٹ نو جی کہ واٹس دا چارم بیہائنڈ اٹ جی. دس اٹ سیلف از سچ اے گریٹ میسج جی, کہ اگر آپ کو اپنی گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کی دہلیز تک کا جو سفر ہے وہ اس رسوائی سے گزارنا پڑے, سفر سے گزرنا پڑے, تو اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے انداز میں اتنا کچھ دکھا رہے ہیں,
چھوڑ دو سب کچھ.
تو پھر آپ کو ابھی آپ اور یہ آپ کا خیال ہے کہ کیسے, یہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو اینڈ اٹس ٹو فار آف. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ میکرو بڑے دیکھ لیے, اپنے نیبرہڈ میں دیکھ لیجیے, افغانستان میں کیا ہوا, ریجن میں دیکھ لیے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا, آپ کا خیال ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ہی سینٹیمنٹ ہے, انسان کی فطرت ایک ہی ہے. آپ جب ان کو انڈر ڈیورس لائیں گے اور سپریس کریں گے, دس اون, ہاں یہاں پہ ہر ایک کا جو اپنا ہے پیمانہ یا کہاں تک کسی کا صبر کیا ہے وہ شاید مختلف ہو سکتا ہے. یہ واقعات ہوتی ہے ایکویشن کہ کیا ہم بڑی وزادار قوم ہیں کہ بڑی بحث قوم ہیں, یہ اکثر یہ ڈیبیٹ میں آتی ہے, یہ بھی ایک پورا موضوع ہے ڈسکس کرنے کا, لیکن میں اس کو پازیٹو لوں گا, بڑی وزادار قوم ہے اور شاید اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں ان لوگوں کو, یہ جو بھی پاس ٹو بی پاکستان میں آج کسٹوڈین بیٹھے ہیں, یہ آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب کا دیکھ لیجئے جی. آپ کو ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گھنٹی بن چکی ہوئی ہے.
بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا پولیٹیشن جاگے گا نہیں. سر میں جو مائنڈ اف یو کین موو ٹو مائی
اسمال کوسچن,
وی ٹاک اباؤٹ پاکستان ا لاٹ اینڈ ویری مینی پیپل دے سینڈ انفارمیشن تھرو سوشل میڈیا دیٹ نو ادر کنٹریز آرمی انٹروین ان پولیٹیکل میٹرز ویئر ایز ان پاکستان آرمی انٹروینشن از لٹل بٹ ٹو مچ. I believe even in America, which is the first world country, over there Donald Trump is against NATO. He says although Ukraine is eye of Vladimir Putin, but if I was there this war would not have happened. He says about the bloodshed in Gaza or in Israel, he does talk about that. What do you say that, and he is against NATO, very against NATO. He says once if he'll get a chance, he will definitely, he doesn't want NATO at all. What do you think, what will be results on 5th of November, who will be the next president? And if the escalation in Middle East will directly or indirectly affect the results of that who will be the president of America and what is the stance of Pentagon on it?
I think it's a very simple answer to this question. The question is who controls Capitol Hill?
Pentagon.
So who controls Pentagon?
Zionists.
Thank you very much. So it doesn't matter who is in office. If you do some minor changes in the policies, that is different. But at macro level, what is the direction? Could anybody step out and resist against those forces who are actually driving their system? Now you tell me, who has the guts to do that? Or to what extent? And mind you, there too, the administration and establishment, they are two aspects. The administration, they have their own fulcrum and their own momentum and they do prevail. Mr. Obama said about Guatemala, those where they keep people under confined situation. He wanted to eliminate that. He wanted to finish with that. Could he? So, and there are so many examples. To what extent the American administration or whosoever the president heading the administration can step out of it. So I really wonder that would there be really such a big change in the fundamental policy? Because that is where they say nip the evil in the bud. Who would dare to do that?
Thank you very kindly, sir. One more question. We, the Pakistanis, sometimes translate things in our way. When Donald Trump talk about the immigration, there are very many Pakistanis living in America and in Canada. Once he talk about migrants, and he mentions the Neutralization Act of 1780, neutralization. I would like to repeat that. That act was that they made rules who can apply and become the citizen of America. So they have to go through certain procedures. This is called for the law of United States Congress that set the first uniform rule of granting United States citizenship by naturalization. Now, my question is, Pakistanis, they translate this migrant and immigration that probably if the Donald Trump will come, we will not be allowed to get the immigration of United States or whatsoever. Why people are not understanding that Donald Trump want to resolve problems on the table rather than the bloodshed? Please, if I'm wrong, do correct.
What I understand what his policy had been, that he wants to regulate. And the fundamental was not regarding the other immigrants. Mostly it was the immigrants from the Mexico.
Yes.
Illegal. You see, that's where the whole thing came. Obviously, I mean, in any country, like in Pakistan, didn't we have a lot of problem with almost like 3 million plus refugees who were not properly documented?
From Afghanistan.
Post-Afghanistan war, yes, I would say. Any administration would like to legitimize anybody who's in the country. That is very, very legitimate expectation. Now, to overstretch it to the extent that he's anti-immigrant, now I think that may not be a very fair, he may not be so much pro, but he wants to regulate. And a lot of those, I don't have the figures, hundreds and thousands of people who are working and not paying taxes and not regulated into the system, yes, he wants to legitimize them. I mean, that's a very fair expectation.
Because he will be the Prime Minister, President of America, so he got to regulate things.
I mean, anybody would. I would say that's a very legitimate requirement. So whatever you have in the country. Now, you talk in general as a philosophy. If you talk of these countries, especially United States of America, once I put this question, let's talk on the lighter side. I was speaking to some Americans, when I say Americans, that some lawyers in the United States of America. So I told them that why don't you amend your laws if you're so much concerned. At that time, there were a lot of problems with the Cubans. I'm talking many years ago. So he had given me a very beautiful answer. He said, Mr. Awan, the first person who lands on this soil, we show him the Statue of Liberty. How can we deprive of a human being of his fundamental right? That any human being who belongs to this earth has a basic statutory rights on any soil, and especially so in the United States of America. So these are the values on which United States of America is based upon. So I don't think so that there could be a paradigm shift towards this American. But Donald Trump has a view. He wants to be pro-American, bi-American, you know, all that thing. He has that thing. But I think realistically speaking, the way American economy is dependent on foreign products like China and all, I don't think so.
He cannot put tariffs on everything.
These would be very short-lived, my yes. I mean, this would actually harm more the American economy, that because I don't think so they can revert it back. I mean, this debate had been in the United States in the early 70s when television and copier machine and the cars were becoming a threat into the United States of America, and this was well deliberated. And I remember a speech of one of the congressmen, I won't remember his name, and his speech prevailed upon the whole House. He said the only way we can be efficient and we can improve ourselves, we have when we have competitive products, so let them be there. I mean, that was one approach. Now, what was the result, or what could be the result, that's a debate by itself. But that had been the approach too. So I don't think so that even if any United States administrator, new administration or administration tries to make a very drastic change in the policies to what the Americans have been used to, may work.
Last question, polarization around the world. When I look at the polarization, everything is polarized. Once if we come to America and this election on 5th of November, what do you think the Americans are ready to see the president of America, a woman? Are they ready to see a woman as a president of America, or are they still not ready for that?
I wouldn't be able to comment much on it. I mean, to the extent that
on a political way,
whether she'll be able to make it or not. I think the concept is now well received. Even during the time of Hillary Clinton, she was almost there as a candidate.
But so she fundamentally,
she couldn't make it. Right. So that's why I often say that we have been more liberal than then. We had female prime minister many, many years ago. Just on the
when I look at the politics around the world, politicians are very good in translating someone's stance in their own way. For example, Donald Trump or Republicans, they believe in abortion. But by abortion, it means in the early stages, or if there is a complication at the later stage as well. But abortion at the third month, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, they consider it as a killing of a fetus. And that's what Donald Trump says. Whereas the politician has translated in a way that it is attack on a woman's right to abort. And I believe killing of a man or a baby is the same thing. Do you want to say something?
There are different views from it. There could be my personal view, my religious view, and how the Americans think. They already have divided opinion in America. But on the lighter side, like you said, the politicians have the ability to put things their way. There was a very interesting statement by Mr. Winston Churchill about the politicians. Somebody asked him, that Mr. Churchill, who's a politician? He said, a politician is a person who has the ability to tell what is going to happen 10 years down the line. And when it doesn't happen, he has the ability to convince why it didn't happen.
Thank you, the politics depends
okay, what line they are towing then. So there's a divided opinion in America.
I believe that was my last question, but one question which I was willing to ask before. History repeats itself, and power is never stays in one hand. It's a history that, you know, power traveled from countries to countries or from... What do you think now? There was a time that dollar had a control around the world. Now, there are other currencies. Bitcoin is there. There is trading taking place in Russian currency. And what do you think? What is the future of the first world country, America? Will the power stay here? Or how long will it take to transfer or shift the power from America to some other country?
Okay, well, what I understand your question was the importance of dollar, the way dollar has hegemonized the world economy. I personally feel that the dollar's monopoly is on its last legs.
Over.
It's almost over now. Because it was over long ago, but they were lucky to make dollar the only currency in OPEC. So by printing excessive dollar, they could offset all that with this monopoly, this oil monopoly. And I don't think so this monopoly is going to be there anymore. A lot of OPEC member of countries, they have started dealing in other currencies. So I understand that dollar. And
so
the moment,
is big example.
And the moment the dollar's international demand reduces or diminishes eventually, I think USA, I mean, you know, somebody told me there's only $17 trillion plus dollar of debt which the United States owns. So you can imagine what is going to be the fate of American economy after that.
So that it owes to China as well, and somebody said that all the industry will be bankrupt and the locks will be made in China. Thank you very kindly, sir.
Thank you.
For the last part, that is specifically for 5th of November, we hope the best for the world, inshallah. Please stay tuned. We'll come back with our sponsors.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. 770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478742900 اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے
او پھر بنے بھی کیوں نہ کیونکہ بیڈ روم سیٹ سوفا سیٹ میٹریسز ڈائننگ ٹیبل ڈیکوریٹو آئٹمز گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج
142 کینیڈی روڈ برامٹن 9058747171
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਤਰੀਖਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ontario.ca/rebuildingoureconomy ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਦਾ
ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜੀ ਪਰ ਖਾਓ ਵਧੀਆ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲਾਓ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਡੱਬੇ ਪਹੁੰਚੋ 680 ਰੈਕਸਡੇਲ ਬੁਲੇਵਰਡ ਔਰ ਕਾਲ 416-679-9191 ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਦ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕਾ.com ਤੇ ਆਓ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਹੋਲ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਟਾਕਾ.com ਤੇ 416-828-6008 416-828-6008 ਪਟਾਕਾ.com
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
कोई बात सादा सी है हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ
ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਇਲੀਟ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਚਲੋ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਕੋ ਲੱਗੂਗਾ ਮਿੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸੈਮਸੰਗ S23 ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ 3 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟਸ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ 5 ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਇਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ 1850 ਐਲਵਿਨ ਰੋਡ ਟੋਬੀਕੋ ਔਰ ਕਾਲ ਐਟ 416-213-1165 Samosa Sweet Factory wishing you all a very happy Diwali.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872
जी हाँ सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट, 9052323663। विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना मैंना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792।
जी सामने नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:31:40 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और अब सब ट्यूसडे वाले दिन तो हमारे और आपके दरमियान में होते हैं जनाब प्रदीप जी। प्रदीप जी का ताल्लुक सन लाइफ फाइनेंशियल से है और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करते हैं इनसे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज प्रदीप जी, 416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी वेलकम टू रेडियो साज़ो आवाज़, कैसे हैं सर?
थैंक यू वेरी मच माजी साहब, और आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टॉक शो।
हमेशा की तरह कुछ प्रदीप जी एंड अपनी कंपनी के बारे में बताएं।
माजिद भाई, 25 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में मैं लगा हुआ हूं। एक ही एरिया में काम किया है और एक ही कंपनी मेरी मेन कंपनी रही है, सन लाइफ। और उसका रीजन यह है कि सन लाइफ बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल कंपनी है, 1865 से काम कर रही है। इसके प्लान्स तो अच्छे हैं, लेकिन सबसे लाजवाब है इसकी कस्टमर सर्विस, 8 to 8 कॉल करें मंडे टू फ्राइडे, इमीडिएट रिस्पांस होता है और क्लेम टाइम बहुत स्मूथ है। इसीलिए लगभग 52% ऑफ ऑल कैनेडियन कंपनीज आर डीलिंग विद सन लाइफ, जो कि अपने सारे एम्प्लॉयज का दुनिया भर का कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप का लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सन लाइफ से लेती हैं। और यही रीजन है कि मैं इतने टाइम से सन लाइफ के साथ हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है और क्लेम टाइम कितना स्मूथ है। माजिद भाई,
416-894-5872 प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं आपसे एवरी ट्यूसडे को, और आज जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड मेजर डेजिग्नेशंस।
जी जी जी,
क्या बताना चाहेंगे आप इसके मुताबिक? पहले
इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें कौन मेजर प्लेयर्स होते हैं। तो आपकी इजाजत से मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस भी एक तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें फर्क इस बात का है कि ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ, यानी कि जो आपने कहा वो पत्थर की लकीर की तरह माना जाता है और इसी के हिसाब से दो पार्टीज जो हैं, दो मेजर पार्टीज यानी इंश्योरेंस कंपनी और एक कॉन्ट्रैक्ट का ओनर, उनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट है और जो जो उन्होंने बयानात दिए हैं उसी पे सारा का सारा सिलसिला कायम होता है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो भी अपने पॉलिसीज लेते समय डिक्लेरेशन दें एकदम सोच समझ के दें और मेक श्योर कि इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नथिंग इज हिडन इन इट।
अब सवाल पैदा होता है कि आपने बता दिया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड हु ओन्स इट?
अब जैसे कि मैं कह रहा था कि दो मेजर पार्टीज होती हैं इसमें जिनको प्रिंसिपल्स कहा जाता है, एक तो होती है इंश्योरेंस कंपनी, ये तो तय बात है सब जानते हैं। दूसरा प्रिंसिपल कौन होता है? जो एप्लीकेशन दाखिल करता है उसको एप्लीकेंट या पॉलिसी ओनर कहा जाता है, जिसके नाम से एप्लीकेशन जाती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये दोनों तो प्रिंसिपल पार्टीज हो गई, लेकिन अब अगला सवाल आता है कि किसकी डेथ पे पैसे मिलेंगे, किसको कवर किया जा रहा है। तो जिस इंडिविजुअल को कवर किया जाता है, जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है जिसकी लाइफ के ऊपर, उसको लाइफ इंश्योर्ड कहा जाता है मजीद भाई। और जिसको बेनिफिट मिलता है उस लाइफ इंश्योर्ड की डेथ पे, उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है। यानी कि तीन मेजर पार्टीज हैं इसमें, एक तो एप्लीकेंट हो गई जिसके नाम से एप्लीकेशन जाती है, दूसरा जिसके लाइफ के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो लाइफ इंश्योर्ड हो गया, और तीसरी पार्टी वो है जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिलता है इंश्योर्ड की डेथ के ऊपर। तो ये तीन मेजर डेजिग्नेशन हैं, और इट इज पॉसिबल माजिद भाई कि एक ही आदमी ये तीनों डेजिग्नेशन को कैरी कर सकता है।
अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट सवाल था आपका कि क्या एक आदमी तीनों को?
बिल्कुल कर सकता है। जैसे अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूं, मैं अपने नाम पे एप्लीकेशन भेजता हूं और अपनी ही लाइफ के ऊपर लेता हूं, तो मैं इंश्योर्ड हो गया और ओनर हो गया, लेकिन बेनिफिशियरी कोई और होगा, क्योंकि मैं अपनी डेथ पे खुद तो बेनिफिट ले नहीं सकता, तो बेनिफिशियरी कोई और होगा, लेकिन मैं क्या हूं? इसका ओनर हूं और मैं इसका इंश्योर्ड हूं। माजिद भाई,
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। ये तो क्लियर हो गया, आप एवरी लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैज एन ओनर, इंश्योर्ड एंड बेनिफिशियरी।
जी हाँ,
बट व्हाट अबाउट द पेयर प्रदीप?
बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है माजिद भाई, क्योंकि जब तक आप प्लान में पे नहीं करेंगे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका पेमेंट भी बहुत जरूरी है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। तो पेयर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है या कोई चौथी शख्सियत भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर हो गया, वाइफ की लाइफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, बेटा जो है उनका वो बेनिफिशियरी है और बेटी जो है वो पेयर है। तो चार अलग अलग शख्सियात भी हो सकती हैं इन चारों चीजों के लिए, लेकिन किसी न किसी का पेयर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी लाइफ पे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं जिसका कि मैं इंश्योर्ड भी खुद हूं, मैं तो ओनर हो गया, इंश्योर्ड हो गया और पेयर भी मैं हो सकता हूं, बस बेनिफिशियरी किसी और को बनाने की जरूरत है।
अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि ये हो सकते हैं इस तरीके से, और पॉसिबल है कि एक शख्स भी मल्टीपल डेजिग्नेशन रख सकता है अपने पास।
जी जी जी,
ठीक है ना। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हाउ अबाउट चेंज इन द प्लान ओनर पेयर और बेनिफिशियरी।
मजीद भाई इन सब के बहुत क्लियर कट प्रोसीजर्स हैं और कैनेडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री चूंकि 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है, इन्होंने इन सब प्रोसीजर्स को काफी कुछ स्ट्रीमलाइन कर लिया है, क्लियर कट, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा बच्चा छोटा है, मैंने उसके ऊपर पॉलिसी ली, तो ओनर तो मैं हूं आज उस पॉलिसी का, लेकिन कल को मैं इंतकाल कर गया तो उस पॉलिसी का कौन और बनेगा, ओनर बनेगा, मेरी वाइफ बनेगी या मेरा बच्चा जो कि मैं उम्मीद करता हूं उस टाइम पे बड़ा हो चुका होगा वो बनेगा। तो उसके लिए फॉर्म्स होते हैं जिनको हम भर सकते हैं कि और उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, इसी तरह से पेयर भी ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ की पॉलिसी का मैं आज पेयर हूं, कल को मैं रिटायर हो जाता हूं या मेरी और मेरी वाइफ के बीच में ताल्लुकात ठीक नहीं रहते, कोई और पेयर बनेगा, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा प्रोसीजर, एक सिंपल सा फॉर्म होता है, आप भरें और वो चेंज हो जाता है, बेनिफिशियरी भी चेंज होते रहते हैं। कितने लोगों के बेनिफिशियरीज जो है उनकी डेथ हो जाती है या उनसे साथ रिलेशन ठीक नहीं रहते, या रिलेशन ठीक भी रहते हैं लेकिन बेनिफिशियरीज की हेल्थ ऐसी हो जाती है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। और अपने सारे लिसनर्स को मैं कहता हूं, आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान हो, हर प्लान में तब्दीली की जरूरत होती है, कोई भी प्लान फॉरएवर स्ट्रांग नहीं रहता। आप मुझे कॉल करें 416-894-5872 पे, मैं आपके प्लान को पढ़ के एक्सप्लेन कर सकता हूं और आपको बता सकता हूं कि आपके हालात के हिसाब से उसमें क्या क्या तब्दीलियां जरूरी हैं।
एक चीज जो हमारी मर्जी की नहीं होती मगर फिर भी हमें फॉलो करना पड़ता है, वो टैक्सेस हैं।
जी जी जी।
क्या ये है कि कनाडा में जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं उनकी जो पैसा आता है उस पर क्या टैक्स पड़ता है? उसमें
माजिद भाई रूल बड़ी क्लियर है कि अगर आपने किसी बेनिफिशियरी को नॉमिनेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पॉलिसी में मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनेट किया है बेनिफिशियरी, उसका नाम लिखा गया है, तो ये कहलाते हैं नेम्ड या नॉमिनेटेड बेनिफिशियरीज। तो अगर हमने पॉलिसी में उसका नाम दिया है तो उसके कई एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा फिर बेनिफिशियरी को टैक्स फ्री मिलता है। दूसरी बात यह है कि बिल बहुत स्पीड से मिलता है, क्योंकि इसमें इस प्रोसेस में अगर हमने नॉमिनेट किया बेनिफिशियरी को तो विल पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि वसीयतनामे में क्या लिखा है, और विल को या एस्टेट को प्रोबेट करने की जरूरत नहीं होती और उस पर कोई फीस भी नहीं लगती। तो फौरन मिलता है पैसा क्योंकि नॉमिनेटेड बेनिफिशियरी है, इनकम टैक्स नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात यह कि ये पैसा क्रेडिटर प्रोटेक्टेड होता है। कोई नहीं कह सकता कि आपके हस्बैंड ने, आपके फादर ने हमसे लोन लिया था या हमें प्रॉमिस किया था या कमिट किया था, कुछ नहीं। जो बेनिफिशियरी है वो डिसाइड कर सकता है, करेगा, और कि इस ये पूरा पैसा मेरे पास आ रहा है मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं। माजिद भाई
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी आज के टॉपिक को कैसे समराइज करेंगे आप?
मैं यही समराइज करना चाहूंगा माजिद भाई कि लाइफ इंश्योरेंस अटमोस्ट फेथ का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो भी आप कहेंगे, जो भी आपके बयान दर्ज होंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आएंगे, उनको पढ़ लें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने एडवाइजर से कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं 416-894-5872। अब तक सैकड़ों पॉलिसीज लोगों की हेल्प करने के लिए रिव्यू की है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आप सुने, आप समझें आपकी पॉलिसी कहां स्टैंड करती है, उनमें क्या क्या तब्दीलियां जो हैं वो वक्त की डिमांड है, और जैसा आपको ठीक लगे फिर करें, क्योंकि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो एक बार फिर से मेरा नंबर 416-894-5872 माजिद भाई।
और हमेशा की तरह जनाब प्रदीप जी एक अपनी पसंद का गीत लेके आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गीत लेके आते हैं, पुरानी गीत होते हैं नॉर्मली। एक फिल्म थी एक हसीना दो दीवाने, एक हसीना दो दीवाने, जितेंद्रा एंड बबीता जी की इसमें कारनामे दिखाए उन्होंने। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। आइए साहब,
थैंक यू वेरी मच भाई।
जनाब प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आइए प्रदीप जी की फरमाइश पर यह गीत समाप्त होता है।
थैंक्स वंस अगेन भाई।
दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें।
दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें।
मंजिलें
प्यार की,
मंजिलें फिर प्यार की,
आएंगी चलते
चलते। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलो। अब तो बाहें प्यार की,
अब हमें
ये जहां,
अब हमें तो ये जहां, देखेगा जलते जलते।
दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलो। ही तुम रूप हो,
मैं हूँ नदिया तुम घटा, मैं छाया तुम धूप हो, मैं छाया तुम धूप हो।
प्यार ये
हो जवां,
प्यार अब ये हो जवां, आंखों में पलते पलते। कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें। तो कुछ बात हो,
जानते
जाएंगे,
जानते हम जाएंगे, शाम के ढलते ढलते।
दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। मंजिले प्यार की, मंजिले
السلام علیکم، میں شباہت علی فرام میگا منی ایکسچینج. ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ مسیساگا.
اب مارگیج کی پریشانی ہوئی ختم کی اسٹون فائنینشل ایکسپرٹ کے ساتھ. کمرشل مارگیج، ریزیڈینشیل مارگیج، پرائیویٹ مارگیج، کنسٹرکشن مارگیج، ری فائنینس، رینیول، سیلف امپلائڈ اور سیکنڈ مارگیج، آل یور مارگیج سولوشنز. کی اسٹون فائنینشیل ایکسپرٹ کی جیسمین پرمار سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے. ان کے پاس ہے مارگیج انڈسٹری میں سالوں کا تجربہ اور آپ کی مارگیج کا آسان حل. جیسمین پرمار مارگیج بروکر. کال ٹوڈے 6479235659 6479235659. اسپیک یور لینگویج انگلش، پنجابی اینڈ ہندی. لائسنس نمبر 13654.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا؟ ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
ایشین فوڈ سینٹر دی ساری ہی لوکیشن سے 18 اکتوبر تو 3 نومبر تک لگ چکی ہے دیوالی سیل. 20 پاؤنڈ آشیرواد آٹا 12.99, 10 پاؤنڈ انڈیا گیٹ باسمتی رائس 13.99, 4 پاؤنڈ ایشین کالا چنا 4.99, 300 گرام ہیپی پنیر 4.49. ایشین فوڈ سینٹر تے دیوالی ڈیکوریشنز آئٹمز دی وڈی ورائٹی ملے گی. دیاز، گفٹ باسکٹس، لائٹس، دیوالی پوجا کا سامان، تازے پھل فروٹ، دالا، سبزیاں، سب کچھ انڈر ون روف. یاد رکھو یہ دیوالی سیل ایشین فوڈ سینٹر دی ساری ہی لوکیشن سے. کال ایٹ
0362.
کیا بات ہے بچے، بڑی آواز نظر آ رہی ہے. ابو جان سبا کا واسطے گاڑی سے گدا گاڑی خریدتے، ہر موڑ پہ رک جاتی ہے.
بچے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ لاؤ گاڑی کی چابی دو، ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر. گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے.
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم، انجن ٹیون اپ، چار ویل، کمپیوٹر بیلنس، بریکس، نئے اور پرانے ٹائر، ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج، اسٹارٹر، آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں. بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فر فر بھاگے گی. اس کی میلوس ڈرائیو ریٹوبیکو، ٹیلی فون 416-747-6800.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660. کوئک ٹرک لیو ڈاٹ کام.
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے. میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیول، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں. kanimsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں.
گرل ان ہارٹ مسز ساگا میں آرڈر وائے فون. عمران بھائی کو کال کریں.
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383. گرل ان ہارٹ.
جی سامع ناظرین، ویلکم بیک اگین. 4:52:53 ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں اور سب چلیے آپ کو ایک اور خوبصورت گیت کی طرف لے چلوں گا، مگر اس گیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز نے. برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے سلطان بھائی آپ کو ملیں گے کہاں پر؟ برامپٹن کے علاقے میں، اور ان کا فون نمبر ہے 9054502828. یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چنکوزی اینڈ بوویر اینڈ چنکوزی کے کارنر پر 801 بوویر ٹو بی ایگزیکٹ. 9054502828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस का फोन नंबर है। डॉक्टर पद्माजा रानी हमारी और आपकी डेंटिस्ट ईस्ट एंड में 3410 शेपर्ड एवेन्यू शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर 4162997466 इनका फोन नंबर है। और इसके साथ साथ हेयर मैक्स के शिराज का कहना है कि अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो या हो रही हो तो आप एक दफा इनके पास जाइए और साज़ो आवाज़ का हवाला दीजिए तो आपका हियरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। एंड हेयर मैक्स के शिराज दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, 4167928792 इनका फोन नंबर है। चलिए साहब इन्हीं किताबों से हम आपको ले चलते हैं एक खूबसूरत गीत। ये 1969 की फिल्म थी वापस, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, सवाब फरमाइए।
एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है।
ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है।
एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाया चुप है तो कंगना बोलता है, तू जो चलती है छोटे से आंगन में चमन सा डोलता है। आज घर हमने, आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है।
ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार।
हमको दो जहाँ से प्यारा है, एक तेरा साथ।
हमको उल्फत ने, हमको उल्फत
संसार तेरा प्यार।